मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 27 जुलाई 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज कुछ कविताओं के बारे में, शेर गीत, इन सब को लेकर हम जीवन के बारे में बात करते हैं। पिछली बार मैंने इनफैक्ट आपसे कविताओं के बारे में ही बात की थी, पिछले से पिछली बार, कि रचनाकार किस प्रकार से कविताएं लिखता है। वो आसान नहीं होता क्योंकि वो शब्द का जमावड़ा न होकर के कहीं ना कहीं हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाता है। कभी कभी आप पाएंगे कि कविताएं बड़ी सीधी साधी सी होती हैं, मतलब उसके शब्द भी सरल सहज होते हैं, भाषा बहुत ही आसान होती है और आप ऊपरी तौर पर उसे पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें है क्या, इसे क्यों इतनी बड़ी कविता माना जा रहा है, क्यों इसे इतनी तरजीह दी जा रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन सच यह है कि जो कविता जितनी सरल होती है उसमें उतनी ज्यादा दिल की गहराइयों तक उतर जाने की ताकत होती है। घाव करे गंभीर, जो सरल चीज होती है उनके घाव बड़े गहरे होते हैं। आज मैं आपको इसी तरह की एक कविता सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में आपको बेहद सरल लगेगी और सच पूछे तो समझने में तो उससे भी अधिक सरल। लेकिन इस कविता में आपको जीवन के बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारे संदेश मिलेंगे और खासकर इस रूप में कि हमें पता लगेगा कि जिस जीवन को हम जीना चाहते हैं, शिद्दत के साथ जीना चाहते हैं, उसमें संपूर्णता आती कैसे है। जैसे मान लीजिए कि किसी, मेरी उम्र 70 साल है, ठीक है, 70 साल में 60 साल हो गए हैं तो 10 साल बचे हैं, तो ये 10 साल भी बीत जाएंगे, जैसे 60 साल बीते हैं वैसे 10 भी बीत जाएंगे, 15 भी बीत जाएंगे, 20 भी बीत जाएंगे, जो भी बचे हुए हैं बीत जाएंगे। लेकिन क्या सच में यह जीना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उम्र की गिनती तो पूरी कर रहे हैं लेकिन जो जीना जिसे हम कहते हैं उसे हम मिस भी कर रहे हैं। तो इस कविता में आप इस बात को देखेंगे, मैंने पृष्ठभूमि थोड़ी सी बताई है और ये जो कविता है फ्रेंड्स, ये पाब्लो नेरुदा की कविता है। इसी बहाने मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कौन है तो आपका नॉलेज थोड़ा सा इससे व्यापक होगा। जो पाब्लो नेरुदा हैं ये बेसिकली चिली के कवि हैं, लैटिन अमेरिकी देश है चिली और चिली मैं गया हुआ हूं और ये सैंटियागो जो चिली की राजधानी है सैंटियागो, वहीं हम लोग 3-4 दिन रुके थे और सैंटियागो से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर इनका बड़ा खूबसूरत मकान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस मायने में बहुत दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्य मेरा रहा कि मैं इनके घर नहीं जा सका। जब हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ सैंटियागो गए थे तब कुछ लोगों ने प्लान किया था और वो चले भी गए और उन्होंने पाब्लो नेरुदा के घर को देखा, वो देखने ही गए थे, मतलब कल्पना करके देखिए कि उस देश ने अपने इस महान कवि के घर को एक तरह से म्यूजियम, तीर्थ स्थल जैसा बना दिया है, बाहर से लोग देखने आते हैं। लेकिन चूंकि मैं राष्ट्रपति जी के साथ था और उनके कुछ प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, इसकी वजह से मैं चूक गया उसके दर्शन करने के लिए। पाब्लो नेरुदा महान कवि और 1971 में इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था, साहित्य का नोबेल प्राइज, और दुर्भाग्य से दो साल के बाद 1973 में फिर पाब्लो नेरुदा नहीं रहे। ये पॉलिटिशियन भी थे और एपिक महाकाव्यों पर आधारित कविताएं लिखते थे और बहुत ही माने हुए चिली के सम्मानित कवियों में इन्हें स्मरण किया जाता है। इस पृष्ठभूमि के बाद आइए मैं आपको इनकी सरल सहज सी कविता बता रहा हूं, बिल्कुल पहाड़ी नदी की तरह अल्हड़ रूप में बहती हुई। न कहीं आपको अलंकार मिलेगा, न कहीं इसमें कोई बनावट मिलेंगे, न शब्दों का कुछ सोच सोच कर जमावड़ा मिलेगा। जैसे कि नदी बहती जाती है या बरसात का पानी छलछलाता हुआ बहता चला जाता है आगे की ओर, इसी तरह से आपको ये कविता भी एहसास कराएगी। देखिए कविता है क्या मित्रों, बहुत सरल कविता है और आप शायद सोचे भी इसको सुनने के बाद कि सर ने क्या कविता सुनाई है, लेकिन थोड़ा महसूस कीजिएगा, जानबूझकर मैंने इसे चुना है। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, अगर आप पढ़ते नहीं कोई किताब, आते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा अगर आप पढ़ते नहीं कोई किताब, अगर आप सुनते नहीं जीवन की ध्वनियां, अगर आप सुनते नहीं जीवन की ध्वनियां, अगर आप करते नहीं किसी की तारीफ, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब मैं पूरी कविता पढ़ रहा हूं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, अगर आप पढ़ते नहीं कोई किताब, अगर आप सुनते नहीं जीवन की ध्वनियां, अगर आप करते नहीं किसी की तारीफ, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था, इस कविता में आपको कहीं कोई अलंकार नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल तरीके से उन्होंने अपनी ये कविता लिखी है और यही इनकी सबसे बड़ी तारीफ भी है। मैंने इनके संकलन पढ़े हैं, बिल्कुल सरल सहज तरीके से अपनी बात कहना। देखिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है ये केवल गणना नहीं है, गिनती नहीं है, 10 साल, 15 साल, 50 साल के हो गए या हम 90 साल होकर के हम मृत्यु को प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात है कि उसमें जीवन कितना था, जिंदगी में जीवन कितना है, कितनी जीवंतता के साथ, कितनी शिद्दत के साथ हमने उसे जिया, और साथ ही साथ हमने उसे एक्सपेंड कितना किया, उसे फैलाया कितना। हम लोगों के साथ जो सबसे बड़ा संकट होता है वो ये कि जैसे मान लीजिए नौकरी मिल गई तो पढ़ना लिखना बंद कर दिया, अब नौकरी मिल गई, जहां रह रहे हैं बस वहीं रह रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि करते नहीं कोई यात्रा। यात्रा का मतलब क्या है कि आप बाहर जाइए, देखिए दुनिया क्या है, इंटरेक्ट कीजिए लोगों से, इससे आपके विचारों में फैलाव आएगा। यात्रा केवल आंखों से देखने की चीज नहीं है, उस स्थान को महसूस भी आप करते, अच्छा यहां के लोग ऐसे हैं, हमें ऐसा होना चाहिए। फिर इसके बाद कहते हैं, अगर आप पढ़ते नहीं कोई किताब, सच पूछिए तो हम लोग किताब पढ़ने के तो आदि है ही नहीं, और जब से ये स्मार्टफोन आपके हाथ में आ गया है तब से तो किताबों के लिए वक्त और भी लोगों के पास खत्म हो गया है। जबकि मैं ये मानता हूं मित्रों कि जब अगर आप आस्थावान है, ईश्वर को मानते हैं, तो आधा घंटा, पौन घंटा, थोड़ा सा वक्त आप जरूर भगवान के सामने बैठते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, जो भी करते हों उन्हें याद करते होंगे। मुझे लगता है कि ठीक इसी तरह से कम मिनिमम आधा घंटा तो किताब पढ़ने के लिए निकालना ही चाहिए। कोई भी आप आधा घंटा निकाल सकते हैं, एक पुस्तक ले लें, आधा आधा घंटा रोज पढ़ें, देखें 10-15 दिन में वो किताब पूरी हो जाएगी, क्योंकि किताब जो है वो अपने आप से बातचीत करना होता है। किताब आप पढ़ते ही नहीं है, याद रखिए, आप किताब को कल्पना के स्तर पर जीते हैं, और इस तरह से उस किताब को पढ़ने के दौरान आप उस किताब को लिख भी रहे होते हैं। आप कभी महसूस करके देखिए कि जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में तो जो वर्णन है वो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी उस वर्णन के अनुकूल एक अपनी कहानी चलने लगती है। आप महसूस कीजिए, आप पाएंगे। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं उसे रच भी रहे होते हैं, और इस तरीके से यात्रा करने पर हमारा नॉलेज बढ़ता है, और जब हम किताबें पढ़ते हैं तो फिर उससे भी हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। अदरवाइज तो हम अपने आप को ही संपूर्ण मानकर बैठे रहते हैं, अपने आप को ही सही मानकर चलते रहते हैं, और जिंदगी में फैलाव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। और फिर कहते हैं कि अगर आप सुनते नहीं जीवन की ध्वनियां, अब आप देखिए कि कितनी खूबसूरत बात कही है, जीवन की ध्वनियां। क्या जीवन की भी ध्वनियां होती हैं मित्र? होती हैं, जीवन की भी ध्वनियां होती हैं। यानी कि जब आप यात्रा करते हैं, जब आप किताबें पढ़ते हैं, तो आपके जो दिमाग के कान हैं वो इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि वो जीवन की ध्वनियों को सुन सकते हैं, जीवन की ध्वनियों को पकड़ सकते हैं। यानी कि ये जीवन चल कैसे रहा है, ये जीवन आगे कैसे बढ़ता है, यह व्यक्ति कैसा है, यह व्यक्ति कह क्या रहा है, हम उन सबको महसूस करते हैं। हर जीवन की अपनी अपनी ध्वनियां हैं, और एक जीवन के अलग अलग वक्त और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ध्वनियां होती हैं, जो बेहद प्यारी होती हैं, बेहद खूबसूरत होती हैं, और बेहद कर्णप्रिय होती हैं। और आखिरी में वो कह रहे हैं कि अगर आप करते नहीं किसी की तारीफ, देखिए जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो याद रखिए, जब कोई हमें खुश करता है तो हमारा चेहरा हंसता है, और जब हम किसी को खुश करते हैं तो हमारा दिल हंसता है। और मुझे लगता है कि हृदय का हंसना चेहरे के हंसने से कई गुना ज्यादा, अगर हम स्वार्थ की भाषा में ही बात करें तो हमें लाभ पहुंचाता है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार उसको फायदा हो गया, चलो। सच पूछिए तो जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि अब हमारे बारे में जो वो इमेज लेकर जाएगा, पक्का मान करके चलिए कि वो बेहतर होगी, और आपने अपना एक प्रशंसक अपॉइंट कर दिया, वो जहां भी जाएगा वो आपकी तारीफ करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी तारीफ कराने के लिए आप उसकी तारीफ कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ न कुछ तो होता है जिसकी तारीफ की जा सके। मैं किसी का बहुत बड़ा आलोचक हो सकता हूं, किसी एक चीज का, उसके किसी दो चीजों का आलोचक हो सकता हूं, लेकिन उसमें कोई ना कोई तो एक चीज होगी, मुझे उस एक चीज को पकड़ना है। और यदि मैं उस एक चीज को पकड़ करके उसकी तारीफ करने लगूं, तो ये जो दो चीज जो आलोचना की है, आप देखेंगे धीरे धीरे मंद पड़ने लगेंगी, क्योंकि वो सोचेगा कि यार ये चीज मेरे अंदर है, मुझे इसे बढ़ाना चाहिए, और वो उसे बढ़ाने में लगेगा, और ये अपनी आप दो चीजें जो है वो घटती चली जाएंगी। तो यही पाब्लो नेरुदा जी कहते हैं दोस्तों कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सच यह है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कविता के बारे में बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, फिर नए नए विषयों पर बात होगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, आपके ये दो दिन बहुत सुखद हों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।